سرخیوں میں یہ آکاشوانی ہے, پرستوت ہے کاریکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے سنسد کے شیت کالین ستر میں پرستاوت پرمکھ ودھیکوں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں ورشٹھ پترکار چیتن چوہان اور پترکار نیلابھ شریواستو.
سنسد کا شیت کالین ستر آج چالو ہو گیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1 سے لے کر 19 دسمبر تک سدن چلے گا اور سدن کے دونوں ہی ہاؤسز لوک سبھا راجیہ سبھا اور 15 سٹنگز اس میں ہونا طے ہوا ہے. اور جیسا کہ گورنمنٹ نے بزنس بتایا ہے کہ کس طرح کا بزنس گورنمنٹ کرے گی, کس طرح کے بلس لائے گی, 10 سے بھی زیادہ بلس بھارت سرکار لا رہی ہے اور ساتھ میں ہی زیادہ تر اس میں اکنامک بلس ہیں. جو بلس اس سیشن میں ہونے والے ہیں تو اس کی شروعات ہم سبھی جانتے ہیں سدن کی کاروائی کے پہلے پردھان منتری پریس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے کچھ وکتویہ رکھتے ہیں, تو پہلے اسے سن لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں.
ساتھیوں, یہ شیتکالین ستر صرف کوئی ریچول نہیں ہے, راس کو پرگتی کی اور تیز گتی سے لے جانے کے جو پریاس چل رہے ہیں اس میں ارجا بھرنے کا کام یہ شیتکالین ستر بھی کرے گا, ایسا میرا پورا وشواس ہے. بھارت نے لوکتنتر کو جیا ہے, لوکتنتر کے امنگ اور اتساہ کو سمے سمے پر ایسے پرگٹ کیا ہے کہ لوکتنتر کے پرتی وشواس اور مضبوط ہوتا رہتا ہے. گت دنوں بہار میں جو چناؤ ہوئے اس میں بھی متدان کے جو وکرم ہوا ہے وہ لوکتنتر کی سب سے بڑی طاقت ہے. ماتاؤں بہنوں کی جو بھاگیداری بڑھ رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک نئی آشا نیا وشواس پیدا کرتی ہے.
ان سبھی میں سارے بلز سبھی امپورٹنٹ ہیں اپنے اپنے کارنوں کے کارن. میں چاہوں گا کہ آپ پلیز سر ہمیں بتائیں کہ کس طرح کے یہ بلز ہیں, آپ کس بل کو زیادہ مہتوپورن سمجھتے ہیں اور کیا منشا ہے بھارت سرکار کی اس کو لانے کے پیچھے.
دیکھیے, جیسے آپ نے کہا کہ کافی سارے بل اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں سرکار کی ایک منشا جو صاف نظر آتی ہے کہ وہ سٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں کافی سارے پروسیسز, اور وہ انویسٹمنٹ کے درشٹی کون سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ مانے جا سکتے ہیں. ایک جو بل ہے جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے انشورنس لا امینڈمنٹ بل. اس میں انشورنس جو سیکٹر ہے اس کا ڈیپر پینیٹریشن, اس کی گروتھ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس انشورنس سیکٹر میں سرکار اس کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے. اس میں 100% ایف ڈی آئی سرکار الاؤ کر رہی ہے انشورنس سیکٹر میں, جو پہلے 74% تھی. اس بل کے تھرو سرکار لائسنسنگ جو ہے انشورنس کمپنیز کا اس کو بھی آسان کرنے جا رہی ہے. ابھی ایسا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے الگ تھا, جنرل کے لیے الگ تھا, موٹر کے لیے الگ تھا, تو ایک یونیفارم لائسنس, ایک ہی لائسنس ہوگا. آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ کو انشورنس کرنا ہے
ایک چھتری کے نیچے,
ہاں ایک لائسنس سے آپ کسی بھی طرح کی انشورنس آپ کر سکتے ہو. تو وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے لیے وہ کیا گیا ہے. اور دوسرا ہے اسپیشلائزڈ انشورنس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے بھی سویدھا اس میں دی جائے گی, اور مائکرو انشورنس پرووائڈر جو ڈیجیٹل فرسٹ ہوں گے اس کا پروادھان بھی اس قانون میں کیا گیا ہے, اور کیپیٹل ریکوائرمنٹ کے پروادھان میں بھی کمی کی گئی ہے کہ چھوٹے جو انویسٹرز ہیں اس میں یا نئی کمپنیز ہیں وہ بھی آنا چاہیں وہ بھی آ سکتی ہیں. اس کا ایک جو بہت بڑا آبجیکٹو ہے کہ 2047 میں بھارت سرکار چاہتی ہے کہ ہر بھارتیہ کے پاس انشورنس کور ہو اور وہ انشورنس اس کے پاس ہو, تو اس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کہ کمپنیز اور ایکسپینشن ہو بھارت. اس میں سرکار دیکھ رہی ہے کہ رورل ایریاز میں جن ایریاز میں کم پینیٹریشن ہے وہاں پہ انشورنس کمپنیز جائیں, شہروں تک نہیں سیمت رہیں, تو اس کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. دوسرا ایک قانون میں امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے بھارت سرکار وہ ہے انسالوینسی اینڈ بینکرپسی کوڈ. یہ 2016 میں لایا گیا تھا, پہلی بار لایا گیا تھا. اس کو لایا گیا تھا کہ بہت ساری کمپنیز میں ڈسپیوٹ ہے
جو دیوالیہ
ہو جاتی ہیں گھوشت, تو ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو اس میں اتنے سالوں میں 2016 سے لے کر اب تک سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹس نے, ٹریبیونلس نے بہت ساری ججمنٹس بھی دی ہیں, آرڈر بھی دیے ہیں, اور اس میں سرکار سے مانگ بھی ہوئی ہے اس میں تھوڑا کلیئرٹی ہونا چاہیے. تو سرکار نے اس میں امینڈمنٹ جو کیے ہیں اس میں کافی کلیئرٹی لانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بل جو تھا اگست میں مانسون ستر کے دوران انٹروڈیوس کیا گیا تھا, سلیکٹ کمیٹی کو گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا, وہاں سے امینڈمنٹ انہوں نے کچھ پرپوز کیے ہیں, تو اب وہ اس کو انکارپوریٹ کر کے سرکار اب اس کو لے کے آ رہی ہے سدن میں. اس کا مین آبجیکٹو ہے کہ جو ٹائم لائن ہے, جو آربیٹریشن کا ٹائم لائن ہے اس کو فکس کرنے کا, और उसमें जो इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल्स हैं उनको लीगल क्लैरिटी भी प्रोवाइड की गई है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अगर आप अमेंडमेंट बिल देखेंगे तो उसमें हर सेक्शन में काफी क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है कि इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का इतना ज्यादा स्कोप ना रहे और लीगल हर्डल्स में ना जाए। बेसिकली उसको स्मूदन करने के लिए सरकार ने ये किया है।
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था इसकी, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ रही है निर्मला सीतारमन, सिन गुड्स टोबैको और पान मसाला जीएसटी रेजीम में ये टैक्स होते थे एट ए हायर रेट, इफ आई एम करेक्ट 28% पे, और जीएसटी 2 रिफॉर्म्स भारत सरकार अभी कुछ महीने पहले ही दीपावली के थोड़ा पहले ही लेके आई थी, तो ये क्या है इसके बारे में भी प्लीज बताएं।
देखिए जब भारत सरकार जीएसटी 2 लेके आई तो उसमें जो सिन गुड्स थे, सेस थे, वो सब खत्म कर दिए गए, तो जीएसटी 2 में कोई सेस नहीं है। पर जो सिन गुड्स हैं जैसे आपका टोबैको हो गया, टोबैको रिलेटेड गुड्स हो गए, लिकर हो गया, तो उन्हें सिन गुड्स माना जाता है, उन पे हायर टैक्स लगता है। लिकर तो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, तो टोबैको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे टैक्स लगाती है। तो ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है ये उस सेस लगाने के लिए लाया गया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिन टैक्स लगे, तो और टैक्स भी उतना ही होगा जितना पहले जीएसटी में लगता था, उतना ही टैक्स लगने जा रहा है। तो लोगों को या कीमत में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जो सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था उस रेवेन्यू लॉस को रोकने के लिए सरकार ये बिल लेके आई है।
इस सिक्योरिटी से भी लिंक किया है जो ये सेस है, ये शायद सिक्योरिटी के या हमारे जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसमें इस्तेमाल करने की बात है। इसको
दो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में करने की और हेल्थ में यूज करने की बात है, तो दोनों में इसमें प्रायोरिटी सेक्टर है, तो इसमें दोनों में बात करने की बात है कि इसको इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा और हेल्थ सेक्टर में भी किया जाएगा। तो इसका मेन अगर आप देखें तो ये नया बिल ऐसा नहीं है, जीएसटी से जो
स्लैब हटा था
वहाँ उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये एक्साइज अमेंडमेंट के थ्रू।
हम अभी बात कर रहे थे तो आपने मुझे ये न्यूक्लियर पावर के बारे में बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, इसके बारे में जरूर बताएं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं।
एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 लाया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि न्यूक्लियर डील के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में। इसमें सबसे पहली बात है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जा रहा है इसमें आने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकती है। तो अब तक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही देश में न्यूक्लियर प्लांट्स लगा सकती थी, तो उससे अब उसको एक्सपेंड करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया और स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया है। तो इसमें जो सर्वेस किए गए हैं उसमें काफी सारी साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं देश भर में जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग सकते हैं, सुरक्षित तरह से लग सकते हैं, और उसमें काफी रिसर्च भी हुआ है भारत में कि किस तरह के प्लांट लग सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इसमें यह भी है कि जो टेक्नोलॉजी है जो बाहर की कंट्रीज के पास, यूएस के पास है, फ्रांस के पास है, जहां पे जर्मनी के पास पहले थी, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी इसमें मैकेनिज्म दिया गया है। इसमें यह भी है कि भारत की कोई कंपनी किसी यूरोपियन कंपनी के साथ या जापानीज कंपनी के साथ, भारत की किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके भारत में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकती है। इसके अलावा एक्सपेंड होने के अलावा इसका एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी है
जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता रही है
कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत ने टारगेट किया है कि हमें करना है 2047 तक जब देश डेवलप्ड कंट्री बनेगी। तो इसमें हमने जो अब तक रिन्यूएबल एनर्जी में किया है हमारा एक्सपेंशन मोस्टली हुआ है सोलर में, विंड में, ये दो प्राइम सेक्टर रहे हैं, पर रिन्यूएबल में इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ क्योंकि काफी बॉटलनेक्स थे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेशन भी है। तो इससे हमारा जो 2070 में नेट जीरो का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम मीट कर पाएंगे और जो एनर्जी एफिशिएंसी है हमारे पास वो भी उससे इंप्रूव होती है, और जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें क्लीन एनर्जी मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप देखिए ग्लोबली कोल जो हमारा थर्मल है वो अभी भी 60% हमें बिजली देता है, तो उसकी डिपेंडेंसी आने वाले टाइम में कम होती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने आज कुछ वक्तव्य दिए उसको सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
ये 17 संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आएं। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनना चाहिए।
दूसरे कुछ बिलों के बारे में आप बता रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें आज एक मणिपुर का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल भी था जो कि आज लोकसभा में पास भी किया है, वो आई थिंक शायद आप ही बता रहे थे मुझे कि ये प्रेसिडेंट रूल है वहां पर, तो शायद इस कारण से पार्लियामेंट को वो प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती
है। वो स्टेट गवर्नमेंट का एक बिल है, जब जीएसटी रिफॉर्म भारत सरकार लेके आई अगस्त में तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को अमेंडमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव लॉज में करने पड़े, तो मणिपुर सरकार का भी उसी तरह का एक अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट में आज लोकसभा में पास हुआ है। और क्योंकि वहाँ पे असेंबली है नहीं, राष्ट्रपति शासन है, तो ये लोकसभा को ही या पार्लियामेंट को ही अप्रूव करना होता है।
जी, दूसरे कुछ बिल्स हैं जैसे कि ये नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल भी है और एक कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल है, इनके बारे में प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं।
कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल जो है इसमें कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अमेंड किया जा रहा है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सर्टन गैप्स जो कंपनी लॉ कमेटी ने 2022 में रिकमेंड किए थे सरकार को, उनको लाया जा रहा है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आप देखेंगे तो एक तो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जो रेगुलेशंस थे उनको इजियर किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। दूसरा तो पेनल्टी एडजस्टमेंट्स हैं, दोनों कानूनों में थोड़ी अलग अलग पेनल्टी थी, स्पेशली फ्रॉड फॉल्स स्टेटमेंट को लेते हुए उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। और जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी रिफॉर्म अभी सरकार एक अमेंडमेंट बिल के थ्रू लेके आ रही है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बेसिकली जो तीनों कानून है, सारे कानून है, वो एक ही तरह के हों, ये ऑब्जेक्टिव है इस कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल का। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और सिंप्लीफाइड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज का भी प्रावधान इसमें किया गया है, उसमें भी क्लैरिटी और सिंप्लीफिकेशन लाया गया है।
जी हाँ, अब नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल,
हाईवे अमेंडमेंट बिल मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट बिल है लैंड एक्विजिशन के पर्पज से, अगर आप देखें,
जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा मुद्दा होता है,
सबसे बड़ा मुद्दा
डिले के कारण,
डिले का कारण अगर आप देखो तो 80-90% जो प्रोजेक्ट है अगर उसमें जो डिले होता है तो लैंड एक्विजिशन की वजह से होता है, कि काफी टाइम लगता है। जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसका जो प्रोसेस है उसको करने में कई बार कई महीने साल भी लग जाते हैं, और उसमें ये भी होता है कि कुछ लोग जिनकी जमीन जा रही है वो कोर्ट चले जाते हैं जिससे डिले होता है। तो इसमें सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जिससे फास्टर लैंड एक्विजिशन होगा, ट्रांसपेरेंट वे में होगा और टाइमली होगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक लैंड रिकॉर्ड्स की बात की गई है, जहां पे भी लैंड एक्विजिशन हो रहा है वहां पे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा जिससे एक्विजिशन में कोई डिस्प्यूट ना हो, एक्विजिशन में तेजी आए। दूसरा कॉम्पनसेशन जो है, यूनिफॉर्म कॉम्पनसेशन सबको मिले, उसमें ऐसा ना हो कि बोले कि इतना कॉम्पनसेशन होना चाहिए उतना होना चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म क्लैरिटी उसमें लाई जा रही है कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा और जो पैसा भी दिया जाएगा कितने समय में आपको पैसा दिया जाएगा लैंड एक्वायर करने में, उस पर भी सरकार ने इस पे क्लैरिटी दी है। और इनिशियल डिपॉजिट कितना सरकार आपको देगी जब वो प्रोसीडिंग शुरू करेगी लैंड एक्विजिशन की, तो उस पर भी सरकार ने क्लैरिटी दी गई है। तो बेसिकली लैंड एक्विजिशन जो है वो कैसे होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और जो टाइमलाइंस क्या है, उस पर ये अमेंडमेंट बिल सरकार लेके आई है।
साथ ही साथ ये जो सारे बिल हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट बिल जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले अभी हम कुछ समय पहले, कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल भी है, इसमें जो संशोधन किए जाएंगे। आई थिंक ये जो छोटे अपराध हैं उनको डिक्रिमिनलाइज या उनमें जो बड़ी पेनल्टीज हैं उसको कम करने से एम्ड है, ये क्या कहते हैं?
जन विश्वास बिल भारत सरकार काफी समय से लाती रही है। हाँ, ये एक रिफॉर्म बिल है, अब पेनल्टीज को लेते हुए इस बार 17 कानूनों में प्रावधान में बदलाव लिया जाएगा जिसमें माइनर ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज रैशनलाइज की जा रही है। ये अगस्त में 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और ये सिलेक्ट कमेटी को गया था, उनके कुछ रिकमेंडेशंस है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ये बिल लाया जा रहा है। तो इसका ये है कि छोटे ऑफेंसेस के लिए किसी को जेल ना जाना पड़े, बहुत हैरेसमेंट उसका ना हो, वो अपना फाइन देके उससे उसको मुक्ति मिल सके, तो इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट बिल मेरे हिसाब से जो है वो है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बिल, वो जो लाया जा रहा है, क्योंकि इसका अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि ये यूपीए के सरकार में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था तो उन्होंने इस पे बात की थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भी लाए थे ऑन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन, पर ये काफी साल हो नहीं पाया है क्योंकि जितने भी रेगुलेटर थे वो चाहते नहीं थे कि अपना कंट्रोल जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे वो कम हो। अब ये भारत सरकार बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आई है हायर एजुकेशन सेक्टर में। इसमें जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एनसीटी, इन सबको मर्ज करके एक ही बॉडी बनेगी जो एक काउंसिल होगा जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और एक्सपर्ट रेगुलेट करेंगे इसमें कि कैसे एजुकेशन को रेगुलेट करना है। तो इसकी एक जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी जिसके मेंबर होंगे, इसमें नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के भी मेंबर होंगे और इसमें हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल भी होगी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और एक इसमें सेक्शन होगा इसका जो लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम फ्रेमवर्क, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो है यूनिफॉर्म पूरे देश के लिए बनाएंगे, और ये एक ऑटोनमस बॉडी होगी। इससे यूनिफॉर्म हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का एक मैकेनिज्म जो है जो वर्ल्ड ओवर देखा गया है होता है वो भारत में इंट्रोड्यूस होगा। इसमें दूसरा फायदा मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो हायर एजुकेशन में आना चाहता है उसको आने के लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि एक ही रेगुलेटर के थ्रू उनको डील करना पड़ेगा, और जो स्टैंडर्ड सरकार देख रही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हायर एजुकेशन में, वो इस रेगुलेटर के थ्रू आएंगे।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित प्रमुख विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चेतन चौहान और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में